धवला पुस्तक पांचवी लेक्चर नंबर दो। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सौवशाणं अन्ताय मच्छहीनं दशदशयशावधीरं परमजिनं
वोच्छन्नमूनन्तर
आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। उसमें प्रथम खंड जो जीव स्थान नामक चल रहा है अपना, और विषय है अंतरानुगम। पांचवी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 12 पर हम आ गए, 1, 2, 12। ये अपना विषय अंतर का चल रहा है। ये कल बात हुई थी, कल थे ना कि नहीं थे? नहीं थे। पहले हमने काल देखा था, किसी गुणस्थान में, किसी मार्गणा के किसी गुणस्थान में लगातार रहने का काल हमने पहले देखा था। उसमें भी नाना जीव की अपेक्षा और एक जीव की अपेक्षा अलग अलग देखा था। अब यहाँ अंतर का अर्थ क्या है कि उस गुणस्थान को छोड़कर अन्यत्र जाए और वापस उस गुणस्थान में आ गए, तो उसके बीच में कितना गैप हो सकता है, उसको कहेंगे अंतर। वो भी नाना जीवों की अपेक्षा और एक जीव की अपेक्षा। जैसे मिथ्यात्व गुणस्थान जो है, मिथ्या दृष्टि, हमेशा ही कोई ना कोई जीव रहेगा ही, यानी उसका काल हमने सदा काल देखा था, तो अंतर में कहेंगे अंतर नहीं है, निरंतर गुणस्थान। निरंतर किस अपेक्षा से? नाना अनेक जीवों की अपेक्षा से। दूसरे गुणस्थान के एक जीव की अपेक्षा हमने मिथ्यात्व का काल जघन्य, उसका अंतर अंतर जघन्य से अंतर्मुख, क्योंकि मिथ्यात्व से अन्य गुणस्थान में चला गया, फिर नीचे आया, यानी तीसरे में गया, समय दृष्टि हुआ और फिर लौट कर मिथ्यात्व में आया, तो अंतर्मुख में आ सकता है। और अधिक से अधिक सम्यक्त्व या तीसरे में, ऐसा दोनों मिलकर अगर रहता है तो दो छासठ सागर, अंतर्मुख कम दो छासठ सागर, इसको देशु ने कहा था। तो फिर दूसरे गुणस्थान का भी हमने देखा था, नाना जीवों की अपेक्षा अंतर एक समय से लेकर पल्ले पास संख्या का अभाव। तीसरे गुणस्थान में नाना जीवों की अपेक्षा,
नाना जीवों की एक समय, अरे एक समय से लेकर पल्ले का संख्या
दोनों के लिए। अब एक जीव की अपेक्षा शासादन की बात करते, अंतर देखना है कितना
अंतर नहीं कम से छोटा
जघन्य में जघन्य
कौन सा गुरु
एक जीव की अपेक्षा शासादन संख्या तो अभाव, क्योंकि शासादन में कब आता है? औपशमिक समय तो से गिर कर आता है, तो दोबारा औपशमिक समय तो प्राप्त करने के पहले इतना काल चला जाता है। बीच में सम्यक तो प्राप्त करता है, पर वो तो वेदक सम्यक तो प्राप्त करेगा, इसलिए जघन्य भी अंतर एक जीव की अपेक्षा पल्ले का संख्या। और उत्कृष्ट अंतर तो कहते हैं अर्ध कुंडल परावर्तन, कुछ कम। तीसरे गुणस्थान में जघन्य अंतर एक जीव की अपेक्षा अंतर बोल, तीसरे से गया चौथे में, वापस लौट कर आया तीसरे में, या पहले में जाकर वापस लौट आया, तो जघन्य अंतर अंतर मोर। और उत्कृष्ट अंतर अर्धपुत्र कुछ कम, वो शब्द लगा देना। अभी ये हम पढ़ेंगे एक जीव की अपेक्षा पृष्ठ संख्या 12 पर नीचे का पैराग्राफ। अब सम्यक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान का एक जीव की अपेक्षा अंतर कहते हैं। एक अनादि मिथ्या दृष्टि जीव ने तीनों ही करण करके उपशम सम्यक्त्व को ग्रहण करते हुए सम्यक्त्व ग्रहण करने के प्रथम समय में अनंत संसार छेद कर अर्ध पुद्गल परिवर्तन मात्र किया, वो पीर हुआ है, वो परी करना। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमें पहली बार वो तीसरे में आया, फिर वो मिथ्यात्व में गया, फिर वो भटका, फिर वो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल घटित करना, इसलिए अभी वो तो अंतर शुरू नहीं हुआ। अभी अभी तो उसने अंतर कब शुरू होगा? तीसरे में आकर तीसरा छूट जाएगा तब। तो ये पहली बार जब प्रथम ऑप्शन हुआ तभी उसको तीसरे में ले जाएंगे। तभी उसने संसार अर्धपुद्गल किया, यानी जब प्रथम ऑप्शन पहली बार प्राप्त होता उस समय से लेकर अभी संसार में घूमने का काल कितना रह गया? अर्धपुद्गल परिवर्तन। अब वो समय तो में भी अंतर्मूत रहेगा। हाँ, अर्धपुद्गल कब से गिनना? सम्यक प्राप्ति के पहले समय से। देशों ने क्यों कहते हैं? क्योंकि फिर उसने अंतर्मूर्त में सम्यक समय बिताया, फिर तीसरे में अंतर्मूर्त रहा, फिर तीसरा छूट गया तब अंतर चालू हो गया, और फिर लास्ट में जाकर जिस भव में मोक्ष जाना है अर्धपुद्गल परावर्तन कुछ कम, फिर वो भव धारण किया, फिर सम्यक प्राप्त किया, फिर वो गिर कर फिर तीसरे में आया, तब तक का हमको काल गिनना है उत्कृष्ट अंतर के लिए। वो अंतर्मूर्त और बीच वाले कुछ भी विकल्प हो सकते हैं। देखो, अर्ध पुद्गल परिवर्तन अभी उसका संसार शेष रहा था, जब पहली बार प्रथम उपशम समय को प्राप्त किया उस समय उपशम सम्यक्त के साथ अंतर्मूर्त रहकर पूरा अंतर्मूर्त उपशम रहा, सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, उसमें भी अंतर्मूर्त रहा, पुनः मिथ्यात्व को प्राप्त हो, अंतर को प्राप्त हो गया, यानी डायरेक्ट प्रथम ऑप्शन के बाद तीसरे में डायरेक्ट आ गया, जब तीसरा छूटा तब अंतर चालू हो गया। पश्चात अर्ध पुद्गल परिवर्तन न रह गया, परिवर्तन काल प्रमाण परिभ्रमण कर संसार के अंतर्मूर्त प्रमाण अवशेष रहने पर, यानी अर्ध पुद्गल कब से गिनना? वो पहली बार प्रथम समय है जो सम्यक का, तब से गिनना। अब अंत में उसके अंतर्मूर्त छोड़ देना, क्योंकि अंतर्मूर्त पहले, फिर उसने सम्यक के साथ संयम धारण किया, संयम नहीं भी धारण किया, तीसरे में लाना है ना, इसलिए एक बार तीसरे में लाकर फिर गिरा के मिथ्यात्व में चले जाएंगे या सम्यक प्राप्त करा के ऊपर चले जाएंगे। संसार के अंतर्मूल प्रमाण अवशेष रहने पर उपशम सम्यक को प्राप्त हुआ, क्योंकि इतना काल घूमा है तो अभी औपशमिक ही प्राप्त करेगा, और वहां पर ही अनंतानुबंधी कषाय की विसंयोजना कर सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। पहले अनंतानुबंधी की विसंयोजना भी कर ली उसने, और फिर सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त किया। नहीं नहीं नहीं, तीसरे में कोई सवाल ही नहीं, उसमें अनंतानुबंधी का उदय नहीं है तीसरे में, पहले और दूसरे में ही है,
बढ़ा
उसी के साथ, यानी उपशम के काल में कर दिया, इसलिए औपशमिक के काल में उसको इंक्लूड कर दिया, बाद में अंतर्मूर्त और बढ़ाना नहीं चाहिए, पश्चात अंतर्मूर्त उसका बच जाए इसलिए। हाँ, वहां पर ही हाँ उपशम सम्यक्त के काल में अनंतानुबंधी की उपशम ये विसंयोजना की, यानी उपशम सम्यक्त के लिए तीन करण परिणाम अलग मान ले, औपशमिक समय तो प्राप्त हुआ उसका जो अंतर्मूर्त काल है उसमें फिर दोबारा विसंयोजना के लिए तीन करण परिणाम करके फिर उसे पहले वाला हुआ तो औपशमिक समय के लिए, क्योंकि अनंतानुबंधी के लिए फिर तीन करण होते हैं, वो उसी काल में हो गए, इस प्रकार से अंतर उपलब्ध हो गया, विसंयोजना उसने इसके काल में ही की, प्रथम उपशम के काल में विसंयोजना की। पेज 12 है ना, यानी उसका पश्चात वाला अंतर्मूर्त बच गया ना, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, अनंतानुबंधी नहीं है, उस तीसरे गुण स्थान में आने के लिए केवल सम्यक मिथ्यात्व का उदय है और वैसे जीव के परिणाम है, वह अनंतानुबंधी का कोई कार्य नहीं है। विसंयोजना वाला भी तीसरे में आ सकता है। इस प्रकार से अंतर उपलब्ध हो गया। तत्पश्चात वेदक सम्यक्त्व को प्राप्त कर, यानी चौथे गुण स्थान में जाएगा, क्योंकि तीसरे से चौथे में जाता है। दर्शन मुनि का क्षपण करके, वहां दर्शन मुनि की क्षपणा का एक समय दृष्टि हुआ, अप्रमत्त संयत हुआ, सातवें में गया। पुनः प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थान संबंधी परावर्तनों को करके, यानी हजारों बार वो छठा सातवा होता है, क्षपक श्रेणी के प्रायोग्य विशुद्धि से विशुद्ध हुआ होकर अपूर्वकरण क्षपक, अनिवृत्तिकरण क्षपक, सूक्ष्म सांप्राय क्षपक, क्षीण कषाय, संयोग केवली और अयोग केवली होकर के सिद्ध पद को प्राप्त हुआ। इन 14 अंतर्मूर्तों से कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अंतरकाल होता है। एक्चुअली पहले भी दो अंतर्मूर्त, वो औक्षमिकता काल और फिर सम्यक मिथ्यात्व का काल भी लेना था, वो भी दो अंतर्मूर्त गिनने थे, यानी पूरा मिलकर भी एक अंतर्मूर्त कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं। पहला दूसरा तीसरे के हमारा अंतर हो गया। असंजद सम्मादिप्ति पहुड़ी जाव अपमत्त संजदाति अंतरम केवचिरम कालादो होदी नाना जीवम पड़ुच्छ नथ्य अंतरम निरंतरम। जैसे पहला गुणस्थान निरंतर गुणस्थान है नाना जीवम की अपेक्षा, वैसे यहाँ पर भी है। चौथा पांचवा छठे सातवें वाले जीव हमेशा ही पाए जाएंगे। असंयत समय दृष्टि गुणस्थान को आदि लेकर अप्रमत्त संयत गुणस्थान तक के प्रत्येक गुणस्थानवर्ती जीवों का अंतर कितने काल तक होता है? नाना जीवन की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है, क्योंकि सर्वकाल ही सूत्रोक्त गुणस्थानवर्ती जीव पाए जाते। काल में हमने नाना जीव की अपेक्षा सदा काल देखा था। एक जीवम पड़ुच्च जहन्ने न अंतो मुहूर्तम, उक्त गुणस्थानों की एक जीव की अपेक्षा अंतरकाल गुणस्थानों का चाहिए। अंतर शब्द बता रहे हैं, उक्त गुणस्थानों का एक जीव की अपेक्षा अंतरकाल जघन्य होना चाहिए। जघन्य ना अंतम उत्तम है ना,
जघन्य अंतर का,
जघन्य अंतर अपेक्षा के बाद जघन्य लिख लो, जघन्य अंतरकाल अंतर्मूर्त है। इस सूत्र का गुणस्थान की परिपाटी से अर्थ कहते हैं, यानी अभी अलग अलग गुण चौथे का अंतर बताएंगे, पांचवे का बताएं, छठी सातवें का बताएंगे, क्योंकि हमको जघन्य अंतर चाहिए। वह इस प्रकार है, एक असंयत समय दृष्टि जीव सैमा सेम को प्राप्त हुआ, वहां पर अंतर्मूर्त काल रहकर अंतर को प्राप्त हो, पुनः असंयत समय दृष्टि हो गया। इस प्रकार से सातवें में जाएगा तो छठा सातवा हजारों बार होगा उसका। नीचे जाने वाला भी नहीं, क्योंकि नीचे जाने वाला फिर अधिक वेग। ये अंतर्मूर्त रहकर अंतर को कैसे होता है?
ये चौथे का अंतर बता रहे ना, असह्यत का, सीएमएस पांचवे में गया और वापस चौथे में आ गया।
देखो यहाँ जो भाषांतर बताया है वो गलत है, वो मैं बता रही हूँ। यहाँ क्या लिखा ऊपर देखो, प्राकृत में।
अच्छा, अंतर काल को
नीचे से पांचवी लाइन एक को असंयत सम्मा दिष्टि संयमा संयमम परिवन्नो, यानी एक असंयत समय दृष्टि संयमा संयम को प्राप्त हुआ। अंतो मुहूर्तम अंतरीय भूओ असंयत सम्मा दिष्टि जादो, यानी अंतर मुहूर्त तक अंतर को प्राप्त होकर, अंतर मुहूर्त रहकर फिर अंतर अंतर को नहीं प्राप्त हुआ, जिस समय पांचवे में गया उसी समय अंतर को प्राप्त हुआ। उन्होंने इतना बताना था अंतर्मूर्त काल तक अंतर को प्राप्त होकर पुनः असंयत समय दृष्टि हो गया।
ये अंतर को प्राप्त पहले ले लेना,
अंतर्मूर्त काल तक लिखो तो रहकर की बात नहीं है, अंतर्मूर्त तक अंतर को प्राप्त हुआ। हाँ तक करो, रहकर के बदले तक करो। रहकर के बदले तक लिखो, अंतर्मूर्त तक अंतर्मूर्त काल तक अंतर को प्राप्त हो पुनः असंयत समय दृष्टि हो गया। इस प्रकार से अंतर्मूर्त प्रमाण अंतरकाल प्राप्त हो गया। अब संयता संयत का अंतर कहते हैं, एक संयता संयत जीव, अब उसको भी ऊपर भी भेजा है उसको, असंयत समय दृष्टि गुणस्थान को अथवा मिथ्या दृष्टि गुणस्थान को अथवा संयम को प्राप्त हुआ और अंतर्मूर्त काल वहां पर रहकर अंतर को प्राप्त हो। यहाँ पर भी ऐसी बात थी, रहकर अंतर को प्राप्त हो कैसा, ऊपर भी है अंतो मुहूर्तम अंतरीय भूवो, यानी और वहां पर और अंतर्मूर्त काल तक वहां पर रहकर ने अंतर्मूर्त काल तक अंतर को प्राप्त हो पुनः संयमा संयम को प्राप्त हो गया। इस प्रकार से संहिता संयत का अंतर्मूर्त प्रमाण जघन्य अंतर प्राप्त। चौथे के लिए मिथ्या तो मैं नहीं लाया हूं, पांचवे के लिए यहाँ लिया, चौथे के लिए नहीं लिया, केवल पांचवे में ही बताया ना, उसको संयम में भेजा ना आप मिथ्या तो में भेजा। आगे बढ़ते हैं, अब प्रमत्त संयत का अंतर कहते हैं, छठे वाले का। एक प्रमत्त संयत जीव अप्रमत्त संयत होकर सर्व लघु काल के पश्चात फिर भी प्रमत्त संयत हो गया, इस प्रकार प्रमत्त संयत का अंतर्मूर्त काल प्रमाण जघन्य अंतर प्राप्त हुआ। यानी छठे का अंतर कब हुआ, सातवें में जाकर वापस आ गए। सातवें में भी रहने का भी जघन्य उत्कृष्ट जो कोई काल है उसमें सर्व जघन्य काल तक रहकर फिर छठे में आ गए। क्या सातवें का भी ऐसा ही घटित करेंगे, छठे में आकर गया नहीं, वो श्रेणी चलती, क्योंकि छठे से भी पूरे का ऊपर का काल छोटा है, उपशम श्रेणी पूरी चढ़कर उतरेगा, वो काल छोटा है, छठे का काल बड़ा है। अब यहाँ कहते हैं, अब अप्रमत्त संयत का अंतर कहते हैं, एक अप्रमत्त संयत जीव उपशम श्रेणी पर चढ़कर पुनः लौटा और अप्रमत्त संयत हो गया। इस प्रकार से अंतर्मूर्त काल प्रमाण जघन्य अंतर अप्रमत्त संयत का उपलब्ध हुआ। शंका, नीचे के प्रमत्तादि गुणस्थानों में भेजकर अप्रमत्त संयत का जघन्य अंतर क्यों नहीं बताया, ये पूछ नहीं, क्योंकि उपशम श्रेणी के सभी गुणस्थानों के कालों से प्रमत्तादि नीचे के एक गुणस्थान का काल भी संख्यात गुणा होता है। देखो 125 पेज निकालो, 125 ये बीच में समाधान लिखा है ना, शंका के नीचे समाधान, वहाँ क्या लिखा है देखो, उपशम श्रेणी संबंधी मिला सभी 125 ये अंक यहाँ बीच में लिखे, इधर लिखे स्टार्टिंग में 1,6,250 ऐसा लिखा है। बीच वाला समाधान उसमें क्या लिखते हैं देखो, उपशम श्रेणी संबंधी सभी अर्थात 4 चढ़ने के और 3 उतरने के इन सब गुणस्थानों संबंधी कालों से अकेले प्रमत्त संयुक्त का काल ही संख्यात गुणा होता है, ऐसा गुरु का उपदेश। इन सबका मिला हुआ सातों गुणस्थानों का चढ़ने के उतरने के, इससे अकेले छठे का काल बड़ा है। हाल में ही बात यानी वो कितने कम काल में वो सभी पूरा श्रेणी चढ़ के उतरने का काल होता है, और उसमें भी हमने देखा था कि गुणस्थान में कितने कितने प्रोसेसेस होते हैं, उसमें कितने कितने अंतर्मूर्त होते हैं। हाँ अभी आगे बढ़ते हैं 11 नंबर का सूत्र। ये तो हमने जगन्य अंतर, क्या प्रश्न है? नहीं, नाना जीवों की अपेक्षा हमेशा है, अंतर नहीं है, अंतर नहीं है। हाँ, एक जीव की अपेक्षा जगन्य अंतर अंतर्मूर्त, एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर बताएंगे। हाँ, उपकसेन अद्दपोगल पर्यटम देशुना, यानी वो गुणस्थान से मिथ्या तो मैं चला गया और फिर लास्ट में जाके फिर प्राप्त किया। उक्त असंयतादि चारों गुणस्थानों का उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। अब गुणस्थान परिपाटी से उत्कृष्ट अंतर की प्ररूपणा करते हैं। एक अनादि मिथ्या दृष्टि जीव ने तीनों करण करके प्रथमोपशम सम्यक्त को ग्रहण करते हुए अनंत संसार छेद कर सम्यक्त ग्रहण करने के प्रथम समय में वह संसार अर्धपुद्गल परिवर्तन मात्र किया। पुनः उपशम सम्यक्त के साथ अंतर्मूर्त काल रहकर, यह एक अंतर्मूर्त बिताया। उपशम सम्यक्त के काल में 6 आवडी अवशेष रह जाने पर सासादन गुणस्थान को प्राप्त होकर अंतर को प्राप्त हुआ, क्योंकि वो जल्दी उसका अंतर कराना है इसलिए 6 आवडी पहले अंतर कराया। पुनः मिथ्यात्व के साथ अर्धपुद्गल परिवर्तन परिभ्रमण कर अंतिम भव में संयम को अथवा संयमासंयम को प्राप्त होकर क्या किया देखो, अपने डायरेक्ट चौथे में नहीं आया, संयम धारण किया या संयमासंयम पहले हुआ अंतिम भव में। कृतकृत्य वेदक सम्यक्ति होकर, कृतकृत्य वेदक सम्यक्ति का अर्थ क्या होता है? शायिक का वाला जो है, तो कृतकृत्य वेदक अंतिम अंतर्मूर्त वो अभी क्षायिक होने जा रहा है, होकर अंतर्मूर्त काल प्रमाण संसार के अवशेष रहने पर परिणामों के निमित्त से असंयत समय दृष्टि हो गया। हाँ, चौथे में आया क्षायिक हो गया। पुनः अप्रमत्त भाव के साथ संयम को प्राप्त होकर फिर अभी सातवें में गया, फिर सातवां छठा अंतर्मूर्त में बहुत हजारों बार करेगा। प्रमत्त अप्रमत्त गुणस्थान संबंधी सहस्रों परावर्तनों को करके शपक श्रेणी के प्रायोग्य विशुद्धि से विशुद्ध होकर, विशुद्धि के लिए भी अंतर्मूर्त चला जाएगा। फिर अपूर्वकरण संयत, यहाँ 6 नंबर देना रह गया है, अनिवृत्तिकरण संयत, सूक्ष्म सांप्राय संयत, क्षीण कषाय वितराग छद्मस्थ, संयोग केवली और अयोग केवली होकर 11 अंतर्मूर्त हो गए ना, निर्वाण को प्राप्त हो गया। इस प्रकार से इन 11 अंतर्मूर्त से कम अर्धपुद्गल परिवर्तन काल असंयत समय दृष्टि जीवों का उत्कृष्ट अंतर होता है। अब संयता संयत का उत्कृष्ट अंतर कहते हैं। एक अनादि मिथ्या दृष्टि जीव ने तीनों करण करके सम्यक्त ग्रहण करने के प्रथम समय में सम्यक्त गुण के द्वारा अनंत संसार छेद कर, ये मेरे ख्याल से उसको कृतकृत्य वेदक में लाया है। क्षायिक होने के बाद वो संयम से चौथे में नहीं आया, आएगा? हाँ ऐसा ही लगता है ना, क्योंकि पूरा क्षायिक करने के बाद भी ला सकते थे ना। पहले क्षायिक नहीं बनाया,
कृतकृत्य वेदक
का, जब तक वेदक के काल में वो चौथे में लाया उसको। शाही होने के पहले चौथे में आया, चौथे में उसने एक शाही कर दिया, फिर पांच चढ़ गया ऊपर। कृतकृत्य काल में उसको चौथे में लाया। ऐसा लगता है,
तो क्या सभी जीव जो मुनिराज भी जो साइक करने को जा रहे हैं वो चौथे में आएंगे, इससे समझना चाहिए।
मरण के बाद तो आएंगे ही, परंतु
नहीं, ये तो अंतिम अंतर्मूल बाकी रहा है वहाँ पे। उसको उन्होंने ऐसे बताया कि वो चौथे में जाता है,
चौथे का अंतर करना इसलिए भूजा जाने जरूरी नहीं है चौथे का मैक्सिमम, क्योंकि उसको पहले पूर्व कोटि भी रहा होगा या कुछ भी, जो हमें पूर्व कोटि से मतलब ही नहीं है, कितनी भी आयु क्यों ना हो, क्योंकि अर्धपुद्गल को गिन रहे हैं हम, वो पूर्व कोटि को नहीं गिन रहे। जितनी कितनी आयु लेकर आया है, स्टार्टिंग में तो उसने संयम धारण किया था और संयम से उसको नीचे लाना है। आगे बढ़ते पेज नंबर 15। ये पेज नंबर ना अंदर की साइड पुस्तक की सिलाई होती है ना, वहां पर है नंबर। हाँ, बाहर वो अलग से नंबर डाले उन्होंने, 1, 6, 11, वो नंबर अलग है। अभी संयता संयत का उत्कृष्ट अंतर कहते हैं। यहाँ पर भी प्रथम ऑप्शन सम्यक तो डायरेक्ट उसके साथ पांचवा गुण स्थान प्राप्त कराना है और वहां से उसके अर्धपुद्गल गिनना है। एक अनादि मिथ्यादृष्टि जीव ने तीनों करण करके सम्यक्त्व ग्रहण करने के प्रथम समय में सम्यक्त्व गुण के द्वारा अनंत संसार छेद कर अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण किया। पुनः सम्यक्त्व के साथ ही ग्रहण किए गए संयमासंयम के साथ अंतर्मूर्त काल रहकर, यानी उसने प्रथम ऑप्शन सम्यक्त्व के साथ पांचवा गुण स्थान प्राप्त किया डायरेक्ट, पहले से पांचवे में ही गया वो, पहले उसमें अंतर्मूत रहा। उपशम सम्यक्त के काल में 6 आवली अवशेष रह जाने पर सासादन गुणस्थान को प्राप्त हुआ, यानी उसका गुणस्थान छूटा, यानी अंतर जल्दी किया उसने, 6 आवली पहले ही अंतर चालू किया, अंतर को प्राप्त हो गया। और मिथ्यात्व के साथ, क्योंकि वो 6 आवली में तो मिथ्यात्व में जाएगा, उसका क्या पांचवा छूटा है तो अंतर गिनना चालू कर दिया हमने। मिथ्यात्व के साथ अर्धपुद्गल परिवर्तन परिभ्रमण कर अंतिम भव में असंयम सहित सम्यक्त को, अथवा संयम को चाहिए, संयमासंयम को नहीं, संयमा निकाल दो ब्रह्म, संयम रखो। ऊपर लिखो ना, स संयमम सम्मतम संयमम वा परिवज्य, यानी असंयम सहित सम्यक्त को अथवा संयम को प्राप्त होकर, क्योंकि उसको पांचवे में नहीं भेजना, अभी पांचवे का अंतर चल रहा है, एकदम लेट में लेट पांचवे में भेजें बाद में। सातवां ही सातवां जाता है तो सातवें में ही जाता है, कोई छठे में चढ़ता ही नहीं है। प्राप्त होकर कृतकृत्य वेदक सम्यक्त्व की सम्यक्त्वी हो, पांचवे में नहीं, संयमा शब्द निकाल दो, अंतिम भव में या चौथे में गया या सातवें में गया, चौथे में शायद किया उसने, कृतकृत्य होने के बाद पांचवे में भेजेंगे उसको। परिणामों के निमित्त से संयमा स्वयं को प्राप्त हुआ, इस प्रकार से इस गुणस्थान का अंतर प्राप्त हो गया। पुनः अप्रमत्त भाव के साथ संयम को प्राप्त होकर, यानी या तो उसको संयमी बनाकर नीचे लाना या चौथे में से उसको पांचवे में भेजना कृतकृत्य वेदक के काल में। तो इसलिए किया होगा कि बाद में उसको शायक करने का समय बच जाए, इसीलिए
किया होगा ना। पर ये तो प्रथम उपक्रम के काल में ही उन्होंने शायक कर दिया, तो प्रथम उपक्रम का काल तो समान है ना सभी जगह।
औषमिक के काल में कैसे करेगा क्षय?
हमने देखा था ना प्रथम उपक्रम में भी शाही कर शाही नहीं करेगा, विषय योद्धा करेगा,
शाही का सवाल ही नहीं है उसमें, समय प्रकृति का उदय हुए बिना शाही हो ही नहीं सकता। शाही करने वाला क्षोभम में से ही करता है, ये नियम है। वो डिटेल नहीं बताए, उन्हें प्रथम उपक्रम प्राप्त किया, फिर कुछ काल रहा, फिर जब उसमें वो कृतकृत्य वेदक हुआ वगैरह वगैरह। यानी वो लास्ट में उतने अंतर्मुख छोड़कर तभी उसको वो कृतकृत्य कराना है, भले भले जल्दी में जल्दी चौथे चौथे वाला हो गया तो कोई बात नहीं है, समय तो हुआ जल्दी तो कोई परेशानी नहीं है, लास्ट में इतने अंतर्मुख छोड़ना है बस इतनी बात है। तो संयम और संयम को प्राप्त हुआ, इस प्रकार से इस गुणस्थान का अंतर प्राप्त हो गया। उसके पश्चात कितने अंतर्मुख छोड़ने हैं? उसके बाद अप्रमत्त भाव के साथ संयम को प्राप्त हुआ, प्राप्त होकर प्रमत्त अप्रमत्त गुणस्थान संबंधी सहस्रों परावर्तनों को करके, मिला ना, मैं कहाँ पढ़ रही हूँ, नीचे से दूसरी लाइन पढ़ रही होगी 15-5 पर, शपक शनि के योग्य विशुद्धि से विशुद्ध होकर अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण सूक्ष्म सांप्राय क्षीण कषाय, यहाँ 9 नंबर डालो, संयोग केवली 8 है ना, देखो देखो ये अंक वो शब्द के बाद डाल रहे हैं, हम हमेशा अंक पहले लिखते हैं बाद में उसका इंडिस्क्रिप्शन करते हैं, यहाँ वो शब्द लिखने के बाद अंक डाल रहे हैं। एक्चुअली ये 9 नंबर यहाँ आना चाहिए, 16 पेज पर स्टार्टिंग में जगह छूटी है, परंतु वो 9 नंबर क्षीण कषाय के लिए दिया हुआ है, फिर संयोग केवली के लिए 10वां नंबर दिया, अयोग केवली के लिए 11 नंबर दिया, होकर निर्वाण को प्राप्त हुआ। इस प्रकार से इन 11 अंतर्मुख से कम अर्धपुद्गल परिवर्तन काल संहिता संयुक्त का उत्कृष्ट अंतर होता है। ये उसके पश्चात शायद करने में टाइम नहीं जावे इसलिए पहले
बचा दिए,
कब पहले शायद हो के बाद, यानी आपको कहना क्षायिक होके उसके पश्चात क्यों नहीं गया, ये कृतकृत्य डालने की क्या जरूरत थी, ऐसा प्रश्न है आपका। चौथे में से जाने के लिए तो कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, चौथा पहले भी क्षायिक होकर बाद में पांचवे में तो जा सकता था, नहीं नहीं नहीं, कारण ये हो सकता है विशुद्धि बढ़ने का कारण बताए, परंतु घट भी सकते ना, संयम से भी ला दिया और पांचवे चौथे से भी पांचवे में भेजा है। कृत कृत्य की कंडीशन क्यों डाली है? यानी चौथे के लिए तो डालने की आवश्यकता नहीं,
टाइम बढ़ाना है, पहले टाइम बढ़ाना है, अंतर ज्यादा करना है।
कैसा हुआ ज्यादा टाइम, कैसे ज्यादा हुआ? चौथे के साथ चाइक कर दिया उसने, और क्षायिक होने के बाद लास्ट में इतने अंतर्मुख छोड़कर वो पांचवा हो गया, ऐसा भी ले सकते थे ना। एक कृतकृत्य वेदक की कंडीशन पता नहीं लग रही,
ठीक है। ऊपर के गुणस्थान में कृतकृत्य वेदक होता है तभी वो चौथे भी नियम से आता है, नहीं ना?
नहीं, नियम से बात नहीं है, ये कंडीशन ऐसी लिए कि लास्ट में उसके कम से कम
टाइम में
वो रहे और उसका अंतर अधिक से अधिक घटित करे, ये कोई नियम नहीं है उसमें। या ऐसा हो सकता है कि शायक होने के बाद वो इतने ही अंतर्मुख, इतना ही काल बचा है तो डायरेक्ट सातवें में क्यों नहीं गया, पांचवें में क्यों गया, ऐसा कुछ तो होना चाहिए उसमें। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कभी उत्तर मिल जाएगा उसका। 16 पेज पर है, अप्रमत्त संयत का अंतर कहते हैं। एक अनादि मिथ्या दृष्टि जीव ने तीनों ही करण करके उपशम सम्यक और संयम को एक साथ प्राप्त होते हुए अनंत संसार छेद कर अर्ध पुद्गल परिवर्तन मात्र किया, पुनः उस अवस्था में अंतर्मूर्त रहकर, अंतर्मूर्त में उसने छठा सातवा हजारों बार किया, फिर प्रमत्त संयत हुआ, यानी वो पूरा उसका अंतर्मुख उसका। इस प्रकार से यह अर्ध पुद्गल, वो पुद्गल बराबर लिखो, ग पूरा और ल परिवर्तन की आदि दृष्टि गोचर हुई, यानी यहाँ से वो अर्ध पुद्गल परावर्तन, यहाँ से पहली बार उसने समय को प्राप्त किया तभी से शुरू हुआ। पुनः उपशम समय के काल में छह आवली अवशेष रह जाने पर सासादन गुणस्थान को जाकर अंतर को प्राप्त होकर, यानी छठे में से वो मिथ्या तो नहीं गया, पहले तो सातवें में से छठा सा तो हजारों बार किया, फिर छठे में आया उपशम के काल में, और फिर छावली पहले दूसरे में गया तो उसका छठे का अंतर चालू हो गया, फिर दूसरे में से पहले में गया। हाँ, अंतर बढ़ाने के लिए सासादन में छावली वहां पर अंतर ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर अंतर को प्राप्त होकर मिथ्यात्व के साथ अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल परिभ्रमण कर अंतिम भव में असंयम सहित सम्यक्त्व को अथवा संयमासंयम को प्राप्त होकर कृतकृत्य वेदक सम्यक्त्वी हो अप्रमत्त भाव के साथ संयम को प्राप्त होकर प्रमत्त संयत हो गया, यानी पहले में सातवा प्राप्त होकर फिर वो छठे में आ जाएगा, तब अंतर समाप्त हो गया उसका। इस प्रकार से इस गुणस्थान का अंतर प्राप्त हो गया पश्चात, यानी बाद में क्या, अंतर तो हो गया, बाद में क्या करेगा, वो सातवा भी होगा, वो शुद्ध होगा, वगैरह वगैरह बातें होगी। शपक श्रेणी के प्रायोग्य अप्रमत्त संयत हुआ, पुनः अपूर्वकरण संयत, ये पांच नंबर हिंदी में डालो, अंग्रेजी में डाला है, अनिवृत्तिकरण संयत, सूक्ष्म सांप्राय संयत, क्षीण कषाय वितराग छद्मस्थ, सयोग केवली और अयोग केवली होकर निर्वाण को प्राप्त हुआ। इस प्रकार से दस अंतर्मुहूर्त से कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल प्रमत्त संयत का उत्कृष्ट अंतर होता है। ये कैसे कैसे हमको सोचना है, घटित करना है, वो बात बता रहे। हाँ, यहाँ पर भी कृतकृत्य लिए, यहाँ तो ठीक है, कृतकृत्य समझ सकते हैं, क्योंकि बाद में उसको क्षायिक में काल नहीं गवाना था, पर वो चौथे से पांचवे में लाते समय कृतकृत्य की कंडीशन क्यों डाली है ख्याल में नहीं आया।
दोनों जगह,
उन्होंने पहले पूरा स्ट्राइक होके बाद भी चपाटे में जा सकता था, वहां क्यों डाली है कंडीशन, ये भी नहीं समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अब अप्रमत्त संयत का अंतर कहते हैं, एक अनादि मिथ्यादृष्टि जीव ने तीनों ही करण करके उपशम सम्यक्त को और अप्रमत्त संयत गुणस्थान को एक साथ प्राप्त होकर सम्यक्त ग्रहण करने के प्रथम समय में ही अनंत संसार छेद कर अर्ध पुद्गल परिवर्तन मात्र किया, वो पीर हुआ, वो परिकरणा परिवर्तन 17 नंबर के पृष्ठ पर आना। भी उस अप्रमत्त संयत गुणस्थान में अंतर्मूर्त रहकर प्रमत्त संयत हुआ और अंतर को प्राप्त होकर, अकेले एक बार ही प्रमत्त संयत नहीं होता, परंतु पहली बार प्रमत्त संयत हुआ, फिर हजारों बार प्रमत्त अप्रमत्त हुआ, जब अंतिम बार प्रमत्त से अप्रमत्त से फिर प्रमत्त हुआ, फिर नीचे आया, ऐसा लेना है, तब अंतर चालू हो गया। अंतर को प्राप्त होकर यानी लास्ट बार जब प्रमत्त संयत हुआ तो अंतर चालू हो गया। अब वो प्रमत्त में से ऊपर नहीं जाने वाला, वो अभी नीचे जाने वाला है। मिथ्यात्व के साथ अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल परिवर्तन कर अंतिम भव में, यहाँ वो
सांसाधन में क्यों नहीं,
ये सांसाधन की कंडीशन यहाँ नहीं डाली है।
हाँ।
वो समझ सकते हैं, इसमें भी सांसाधन ले सकते हैं,
क्योंकि छियावली
छठे से लिया तो
छियावली ज्यादा बढ़ा रहा है। हाँ, तो
वो तो नहीं लिखा है, परंतु वो समझ लेना इसमें भी बराबर है। अप्रमत्त की बात चल रही, प्रमत्त की
नहीं, पर अप्रमत्त से प्रमत्त में आके वो शासन में जा सकता है ना, नहीं पर अप्रमत्त का अंतर हो गया, प्रमत्त हुआ और शासन में गया, तो छियावली पहले जाएगा ना, क्योंकि प्रमत्त में से तो शासन में जाएगा,
क्योंकि छह अवली में तो बहुत बार छठा सातवा होगा,
शासन में जा ही सकता है ना अरविंद भाई, उसमें तो अर्जा नहीं है।
यानी वो समझ सकते हैं इसमें हम, देखो प्रमत्त संयत हुआ और अंतर को प्राप्त हुआ, मिथ्यात्व के साथ अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल परिवर्तन कर अंतिम भव में सम्यक्त्व अथवा सेमा सेम को प्राप्त होकर तो क्या छठे का काल छह अवली से ज्यादा लेना चाहते, अकेले छह अवली काल छठे में चले जाएगा, नहीं नहीं क्यों नहीं लिया, वो भी एक प्रश्न है ना।
पर हम लोग देखते हैं ना प्रमत संयत से भी वो सांसाधन में जा सकता है,
उसका सवाल नहीं है, प्रमत से जा सकता है, पर क्या प्रमत से वो उसका काल छह अवली से ज्यादा है, तभी ये बात हो सकती है। समझ में आई ना बात, यानी वो प्रमत्त के काल में ही छावली वो घटित हो जाती है, इसलिए वो प्रमत्त में आते ही उसका अंतर चालू हो गया, ये यही बात उसका सॉल्यूशन हो सकता है। छावली से यदि वो ज्यादा है तो ही बात घटित होगी। क्या छठे का काल छह अवली से ज्यादा है, यही प्रश्न उठता है ना, आगे बढ़ते हैं। चदुन्नम सामगानम अंतरम केवचिरम कालादो होदी नाना जीवम पड़ुच्च जहन्नेन एक समयम। ये जहा नहीं, जहन्नेन एक समयम। देखो यहाँ अंतर कैसे, नाना जीवन की अपेक्षा उपशम श्रेणी के गुणस्थान है, आठवां है, नौवां है, दसवां है या ग्यारहवां है, अनेक जीवों ने वो श्रेणी चढ़ी, आठवें में आ गए, आठवां पार करके नवे में चले गए। एक समय के लिए आठवें में कोई जीव नहीं है, एक समय के पश्चात कोई अन्य जीव उसमें आठवें में आ गया, तो नाना जीवन की अपेक्षा एक समय अंतर। ख्याल में ना, कैसा सोचना। तो नाना जीव, अभी हम हिंदी पढ़ते हैं, उपशम श्रेणी के चारों उपशामकों का अंतर कितने काल तक होता है? नाना जीवन की अपेक्षा जघन्य से एक समय अंतर है। उनमें से पहले अपूर्वकरण उपशामक का अंतर कहते हैं। सात आठ जन अथवा बहुत से जीव अपूर्वकरण गुणस्थान के उपशामक काल क्षीण हो जाने पर अनिवृत्तिकरण उपशामक अथवा अप्रमत्त संयत होकर, यानी आठवें में थे कोई, चढ़ने वाले तो नौवे में चले गए, उतरने वाले सातवें में चले गए, अभी आठवें में कोई नहीं रहा, ऐसा ले रहा तथा मरण करके देव, कुछ तो मर करके चले गए तो उनका भी आठवां गुणस्थान छूट गया, मर करके देव हो गए। इस प्रकार एक समय के लिए अपूर्व गुणस्थान अंतर को प्राप्त हो गया। पश्चात द्वितीय समय में उपशामक हो गए। द्वितीय समय में उपशामक हो गए का अर्थ होता है कोई है नौवे में से आठवें में एंटर हो गया, या कोई सातवें में से ऊपर चढ़ के आया। इस प्रकार एक समय प्रमाण अंतरकाल लब्ध हो गया। इसी प्रकार से अनिवृत्तिकरण उपशामक, अनिवृत्तिकरण के लिए नौवे में थे कोई जीव, कोई दसवें में गए, कोई नीचे आठवें में आए, कोई मरकर देव हो गए, एक समय के लिए कोई नहीं रहा, फिर नेक्स्ट समय में अन्य कोई जीव नवे गुणस्थान में आ गए। सूक्ष्म सांप्राय उपशामक और उपशांत कषाय उपशामकों का एक समय प्रमाण जघन्य अंतर कहना चाहिए, वो जघन्य चाहिए, जधन्य हुआ वा धन घ चाहिए। अब ये नाना जीवन की अपेक्षा जघन्य अंतर। अब उत्कृष्ट अंतर कैसे सोचना, कि इतने काल के लिए किसी भी जीव ने उषम श्रेणी नहीं चढ़ी, ऐसा लंबे से लंबा कितना अंतर होता है, किसी भी मुनिराज ने उषम श्रेणी चढ़ी ही नहीं बहुत लंबे काल तक, तो उसको कहते हैं वर्ष पृथक्व। वर्ष पृथक्व, पृथक्व वर्ष यानी तीन से आठ वर्ष तक। देखो उपकसेन वास पुधत्तम, उक्त चारों उपशामकों का उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथक्व है। देखो शपथ श्रेणी कोई नहीं चढ़े तो छह महीना का अंतर पड़ता है, पर उपशम श्रेणी कोई नहीं चढ़े ये हो सकता है। जैसे सात आठ जन अथवा बहुत से अपूर्वकरण उपशामक जीव अनिवृत्तिकरण उपशामक अथवा अप्रमत्त संयत हुए और वे मरण करके देव हुए, इस प्रकार यह अपूर्वकरण यानी वो पश्चात, क्योंकि फिर अनिवृत्तिकरण वाले ऊपर भेजा है जिसको, वो लौट के भी आ सकता है ना, उसको अभी बीच में मरकर वो देव हो गए। या जो सातवें में आया है, सातवें में आया है फिर बाद में मरेगा तो सही ना, क्यों तो मरकर फिर देव में चलेगा, क्योंकि उनका हमें उत्कृष्ट अंतर घटित कराना है, क्योंकि वो नाना जीव है या कुछ भी हुआ उनका, दूसरे जीव उसमें नहीं आए, ये एक तीन से आठ वर्ष कहते हैं साधारण पृथक्व का कुछ भी अर्थ हो सकता है। नाना जीव लेना ना, अन्य जीव आएंगे उसमें। अथवा चाहिए ना,
अथवा किया है,
किया था फिर अथवा लिखा था, फिर भी उसको निकाल कर फिर टिक किया, एक दो तीन प्रतिशूल वहाँ ज्यादा इसी पाठ है
बराबर है। अप्रमत हुए अथवा मरण करके देव हो गए तो गुणस्तर के लिए
अथवा भी चाहिए।
हाँ।
नहीं पर वो नाना जो कुछ भी हो सकते उसकी कुछ लेना देना नहीं है, वो शास्त्र पक्ष नहीं चल के मोक्ष भी जा सकते हैं।
तो ये तो उपशमुख श्रेणी की
बात है। अथवा लिख के हम निकाल दिया, वो जो मरकर दे होगी तो अनिवृत्तिकरण वाले के लिए होना चाहिए, अप्रमत्त के लिए नहीं,
उपशमक के लिए होना चाहिए,
क्योंकि वो अनिवृत्तिकरण में गए, वो अंतर्मूर्त में लौट के आएंगे। ऊपर क्या है, 70 से जना बहुआ वा 7-8 जन अथवा बहुत से जी अपु ओसामगा अपुमत्ता वा कालम करियो देवा ज्यादा। अपुवो उसामगा अपुमत्ता वा इन्हें अप्रमत्त के लिए अथवा कहा, कालम करिए देवा ज्यादा। उतना नीचे थे उसके एक दो तीन प्रतिशु देवा वा ज्यादा इति पाठ है, अथवा इति पाठ है तीते तेंचा। इन्हें अथवा शब्द संयुक्तिक लगता है, हमने क्यों फिर निकाला और फिर अथवा चाहिए
और वे की जगह
यानी अनिवृत्तिकरण के तो नियम से मरकर देव हो जाएंगे और अप्रमत्त के लिए वो अथवा की बात घटित हो, अप्रमत्त के लिए वो कंडीशन की जरूरत नहीं है, ठीक है वो रहने जो जो है और वे मर करके देव हैं। इस प्रकार यह अपूर्वकरण उपशामक गुणस्थान उत्कृष्ट रूप से वर्ष पृथक्व के लिए अंतर को प्राप्त हो गया। तत्पश्चात वर्ष पृथत्व काल के व्यतीत होने पर 7-8 अथवा बहुत से अप्रमत्त संयत जीव अपूर्वकरण उपशामक हुए। इस प्रकार वर्ष पृथत्व प्रमाण उत्कृष्ट अंतर प्राप्त हो गया। इसी प्रकार अनिवृत्ति करणादि तीनों उपशामकों का अंतर वर्ष पृथत्व प्रमाण कहना चाहिए, क्योंकि अपूर्वकरण उपशामक के अंतर से तीनों उपशामकों के अंतर में कोई विशेषता नहीं, यानी किसी जीव ने उपशम श्रेणी चढ़ी ही नहीं है बीच में, ऐसा जीव लेना, ऐसे अन्य अन्य जीव लेने। अब 14 नंबर, एक जीवन पड़ुच्च जहन्ने न अंतो मोहत्तम। अब आठवें वाला फिर दोबारा आठवें में कैसा आएगा, चढ़ने वाला उतर कर आ सकता है ना। 11वें का कैसा करेंगे, फिर दोबारा उपशम श्रेणी करेंगे। जैसे एक अपूर्वकरण उपशामक, अनिवृत्ति उपशामक, सूक्ष्म सांप्राय उपशामक और उपशांत कषाय उपशामक होकर फिर भी सूक्ष्म सांप्रायिक उपशामक और अनिवृत्तिकरण उपशामक और होकर अपूर्वकरण उपशामक हो गया। आठवें वाला 9वां 10वां 11वां 10वां 9वां करके फिर आठवें में आ गया तो उसका अंतर समाप्त हो गया। इस प्रकार अंतर्मूर्त काल प्रमाण जगन्य अंतर उपलब्ध हुआ। ये अनिवृत्तिकरण से लगाकर पुनः अपूर्वकरण उपशामक होने के पूर्व तक के पांचों ही गुणस्थानों के कालों को एकत्र करने पर भी वह काल अंतर्मूर्त ही होता है, इसलिए जगन्य अंतर भी अंतर्मूर्त ही होता है। ये आठवें का बताया। इसी प्रकार शेष तीन उपशामकों का एक जीव संबंधी जगन्य अंतर कहना चाहिए। विशेष बात यह है कि अनिवृत्तिकरण उपशामक के सूक्ष्म सांप्रायिक संबंधी दो अंतर्मूर्तकाल और उपशांत कषाय संबंधी एक अंतर्मूर्तकाल, ये तीनों मिलाकर जगन्य अंतर होता है। नवे के लिए क्या कहेंगे, 10वां 11वां और फिर 10वां, तीन गुणस्थानों का मिलकर अंतर्मूर्त। 10वें के लिए क्या अंतर होगा, केवल एक 11वें का काल उतना ही अंतर होगा। सूक्ष्म सांप्राय उपशामक के उपशांत कषाय संबंधी एक अंतर्मूल काल ही जघन्य अंतर होता है, किंतु उपशांत कषाय उपशामक का अभी ग्यारहवें के लिए कैसे है, वो ग्यारहवें वाला छूटेगा तो फिर दोबारा ग्यारहवें में नहीं जाता है, पूरी श्रेणी उतरेगा, सत्रवा सातवें में आएगा, फिर छठा सातवा करेगा, फिर दोबारा चढ़ेगा श्रेणी, तब उसका दोबारा हो जाएगा, दोबारा श्रेणी चढ़ के ग्यारहवें में आना चाहिए। हाँ, उसी समय नहीं फिर से वो तीन करण करेगा ना, वो बताएंगे कि देखो, किंतु उपशांत वो उपाशांत हुआ, उपशांत कषाय उपशामक का उपशांत कषाय को नीचे उतार कर सूक्ष्म सांप्राय अनिवृत्तिकरण अपूर्वकरण और अप्रमत्त संयत होकर प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थान संबंधी सहस्रों परावर्तनों को करके, यानी डायरेक्ट फिर चढ़ता नहीं है, छठा सातवा हजारों बार होता है और फिर बाद में फिर सातिशय होकर फिर ऊपर चढ़ेगा, पुनः अप्रमत्त अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण सूक्ष्म सांप्रायिक होकर पुनः उपशांत कषाय गुणस्थान को प्राप्त हुए जीव के नौ अध्यायों का यानी कालों का सम्मिलित प्रमाण अंतर्मूर्त काल प्रमाण अंतर होता है। वो प्रमाण पहले चाहिए, अंतर्मूर्त काल प्रमाण अंतर होता है। अध्याय ने काल, अध्याय का अर्थ थे कालांतरमूर्त, ये नौ बताए ना ऊपर, ग्यारहवें से छोटे दसवें में, नौवे में, आठवें में, सातवें में, फिर छठे सातवें में, फिर सातवें में, फिर आठ नौ दस, ये नौ अंतर्मूर्त गए ना बीच में, अध्याय का अर्थ होता है काल, नौ कालों को मिलाकर भी अंतर्मूर्त होगा, यानी जो नौ गुणस्थान बताए उनके काल मिलाकर भी अंतर्मूर्त होता है। अब कोई जीव उपशम श्रेणी चढ़ता है, देखो मनीषा भी किसी जीव उपशम श्रेणी कौन चढ़ेंगे मुनिराज, और उपशम श्रेणी यानी कैसे, ग्यारहवें गुणस्थान में तो पूर्ण वितराग अरिहंत जैसे हुए, अब वो एक बार उपशम श्रेणी से उतरे, फिर मान लेते देव हो गया, फिर मान लेते जो कुछ हो गए, तब फिर अधिक से अधिक कितने काल तक अभी संसार में रूलेंगे, अर्धपुद्गल, यानी उसका अर्थ क्या, वो जीव मिथ्यात्व में जाएगा ना, तभी तो अर्धपुद्गल घटित होगा, यही तो कहते हैं। तो ऐसे जो हम कीड़े मकोड़े देखते हैं, ये निगोद विगोद जीव है, उसमें ऐसे कोई जीव पड़े जिन्होंने कभी ना कभी दो बार उपशम श्रेणी भी चढ़ी थी, चार बार भी चढ़ी चढ़ के उतरी थी, और कितने लाखों बार यानी असंख्यात बार सम्यक तो भी प्राप्त किया था, ऐसे भी जीव सभी चौदह जीव समास में कहीं ना कहीं पड़े हुए हैं। और यहाँ किसी को सम्यक तो होता तो लगता है कि उसको मैंने क्या एकदम सिंह हो गया है मेरे को। देखो ये पढ़ने से ये फायदा होता है ना, ये ख्याल में आता है क्या क्या वस्तु स्थिति।
देखो बात ऐसी है कि ऐसे ऐसे मुनि हो गए हैं, श्रेणी चढ़ी है, ऐसे जीवों के भी परिणाम पलट कर वो नीचे गिरते हैं, तो अपने को तो कितना संभालना चाहिए कि अपने परिणाम ठीक रहे, ख्याल में है ना, कुछ ना कुछ बहानाबाजी करके अपन अपना स्वरूप समझने के लिए आनाकानी करते हैं, उसका फल क्या है ये समझ में आता है।
हाँ देखो, इन्हें परिणामों से ये भेद ज्ञान करने की मुख्य बात है, परिणाम कभी दगा देंगे तो पता नहीं, उसके भरोसे मत रहना चाहिए। अभी अच्छे परिणाम है स्वाध्याय के हैं तो कभी बिगड़ जाएंगे, अरे मुनियों के हो गए तो हमारी आपकी क्या कथा है, देखो उक्त चारों उपशामकों का ऊपर बताया ना, उपकसेन अर्धपोगल परियतम देसुण, उक्त चारों उपशामकों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन काल है, इनमें से पहले एक जीव की अपेक्षा अपूर्वकरण गुणस्थान का उत्कृष्ट अंतर कहते हैं। एक अनादि मिथ्यादृष्टि जीव ने तीनों ही करण करके उपशम सम्यक और संयम को एक साथ प्राप्त होने के प्रथम समय में ही अनंत संसार को छेद कर अर्धपुद्गल परिवर्तन मात्र करके, वहां से अर्धपुद्गल गिनना है हमको उस समय से लेकर। अंतर्मूर्त प्रमाण अप्रमत्त संयत के काल का अनुपालन किया, पीछे प्रमत्त संयत हुआ, पुनः वेदक सम्यक्त को उपशमा कर यानी द्वितीय उपशम सम्यक्त प्राप्त किया, सहस्रों प्रमत्त अप्रमत्त परावर्तनों को करके, यानी वैसे भी पहली बार जो प्रथम उपशम किया ना वहां पर भी हजारों बार छठा सातवा हुआ, बाद में वो वेदक समय दृष्टि हुआ, क्योंकि डायरेक्ट प्रथम उपशम में से तो श्रेणी चढ़ेगा नहीं, तो वेदक सम्यक होने के बाद अंतर्मूर्त में फिर द्वितीय उपशम किया, तो वो सब जगह उसका हजारों बार छठा सातवा चल ही रहा है उसका। वेदक सम्यक को उपशमा करेंगे द्वितीय उपशम प्राप्त करके, यानी पहले प्रथम उपशम में से वो वेदक हुआ, फिर वेदक में से द्वितीय उपशम करेगा, सहस्रो प्रमत्त अप्रमत्त परावर्तनों को करके, यानी द्वितीय उपशम करने के बाद भी छठा सातवा हजारों बार होता है। आप पहले लिखना चाहिए था, फिर भी वो पहला जो एक आंकड़ा लिखा है वो पहली बार वो आना, बहुत बार उसने प्रमत्त अप्रमत्त किया उसको ही लेना है।
द्वितीय उपशम करता है तभी विशुद्धि तो बढ़ती है, क्योंकि वहाँ पे भी कर्म परिणाम होते हैं, तो उसमें भी छठा सप्ताह होता है,
बिल्कुल हजारों बार होता है। सातवें में होते द्वितीय उपशम करने के बाद वो छठा सप्ताह होता है, सातवें में द्वितीय उपशम
करने के पश्चात उसका छठा सप्ताह,
सातवें में द्वितीय
करण परिणाम हो जाने के पश्चात उसका छठा सप्ताह।
क्योंकि करण में तो विशुद्धि विशुद्धि है ना, यानी वो कितने छोटे काल में होती होगी।
तो साथी से प्रबंध कहते हैं वहां पे भी छठा सप्ताह होता रहेगा,
सहस्रो प्रमत्त अप्रमत्त परावर्तनों को करके उपशम श्रेणी के योग्य अप्रमत्त संयत हो गया, यानी वो अध प्रवृत्त करण किया उसने, पुनः अपूर्व करण अनिवृत्ति करण सूक्ष्म सांप्राय उपशांत कषाय, पुनः सूक्ष्म सांप्राय अनिवृत्ति करण और पुनः अपूर्व करण उन्नस्थानवर्ती हो गया, पश्चात नीचे गिरकर अंतर को प्राप्त हुआ, अर्धपुद्गल परिवर्तन काल प्रमाण परिवर्तन करके अंतिम भव में। मुझे ये कहना था उसको पूरी श्रेणी क्यों चढ़ाई, चढ़ते समय वो जल्दी
मरण करके देव में चला,
एक यानी पहला भक् के बाद मर सकते थे तो देव में गया और बाद में मिथ्यात्व तो में गया कालांतर से, हमें तो अर्धपुद्गल ही गिनना है ना, वैसा भी गिन सकते हैं। ये फॉर एग्जांपल उन्होंने बताया है,
ये चारों गुणस्थान का एक साथ बताया ना इसलिए मरण कर,
नहीं नहीं ठीक है, उन्होंने पूरी उपशम श्रेणी चढ़ के उतराई है और अर्धपुद्गल परिवर्तन काल प्रमाण परिवर्तन करके अंतिम भव में दर्शन मुनि की तीन प्रकृतियों का क्षपण करके, अभी ये सभी पूरा विस्तार नहीं बताया, यानी पहले वो तो समय को धारण किया, वो जो कुछ जिस पूर्ण स्थान में गया वो क्षपणा करके वहां से शुरू किया, क्षय समय दृष्टि हुआ, पहले क्यों क्षय किया देखो, अभी बाद में जो श्रेणी चढ़ने के पहले बाकी सभी बातें हो गई कि उन्हें समय को भी प्राप्त किया, मुनिराज भी हुए, बहुत काल बिताया भी, लास्ट में कितना बाकी रखना है, क्षपक श्रेणी का अंतर्मूर्त और उपशम श्रेणी का अंतर्मूर्त, उपशम श्रेणी चढ़ा के उतरेंगे और फिर क्षपक श्रेणी चढ़ा के मोक्ष भेजेंगे, इतना काल बाद में छोड़ना है, इसलिए पहले क्षपण करा के ही उसको उपशम श्रेणी चढ़ाए, क्षायिक समय दृष्टि होकर उपशम श्रेणी चढ़ाई उसको। देखो अब यहाँ पर अंतिम भव में दर्शन मोह की तीनों प्रकृतियों का क्षपण करके, अभी आप कहेंगे अंतिम भव में डायरेक्ट कैसा क्षपण किया, तो उसके लिए प्रथम उपशम प्राप्त किया, जो गुणस्थान हुआ उसमें से फिर वेदक समय दृष्टि हुआ, फिर बाद में क्षपणा की, फिर बाद में वो तो मुनिराज वो सब उसमें समझ में लेना, अपूर्व कर्ण उपशामक हुआ यानी उसके पहले मुनि हुआ वो सब समझ लेना, वो एक एक बात बाद वाले अंतर्मूर्त गिनाएंगे, जितना छोड़ना है अर्ध पुद्गल में से उतना यहाँ गिनाएंगे आपको। इस प्रकार अंतरकाल उपलब्ध हो गया, अपूर्व कर्ण उपशामक हुआ ना अभी, यानी अंतर समाप्त हुआ, पहले आठवा छूटा था तब से अंतर चालू किया था, आठवा प्राप्त होते ही अंतर छूट गया यानी अंतर समाप्त हो गया। अभी इसके अंतर के बाद कितना माइनस करना है अर्धपुद्गल में से वो बताएंगे। पुनः अनिवृत्तिकरण, देखो इसको 14 नंबर क्यों दिया, क्योंकि पहले उन्होंने समय को प्राप्त किया था तब से गिना था, तो पहले के अंतर्मूर्त माइनस करने हैं। अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय और उपशांत कह रहा है उपशामक हो गया, पुनः लौटकर सूक्ष्म सांप्राय, अनिवृत्तिकरण, अपूर्वकरण, अप्रमत्त संयत, प्रमत्त संयत, पुनः अप्रमत्त संयत। अभी ये केवल एक एक बार लिखा है पर उसमें हजारों बार समझ लेना। अपूर्वकरण क्षपक, अभी प्रमत्त संयत लिखा तो यहाँ तो अभी क्षपक श्रेणी चढ़ने के सन्मुख हुआ। अनिवृत्तिकरण क्षपक, सूक्ष्म सांप्राय क्षपक, क्षीण कषाय क्षपक, सहयोगी केवली और अयोगी केवली होकर निर्वाण को प्राप्त हुआ। इस प्रकार 28 अंतर्मूर्त कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल अपूर्वकरण का उत्कृष्ट अंतर होता है। इसी प्रकार से तीनों उपशामकों का अंतर जानना चाहिए, किंतु विशेष बात यह है कि परिपाटी क्रम से अनिवृत्तिकरण उपशामक के 26, क्योंकि वो यहाँ तो अपूर्वकरण था इसलिए एक अंतर्मूर्त दोनों ओर बढ़ जाते हैं, पहली बार किया था तभी और अभी किया तो। सूक्ष्म सांप्राय उपशामक के 24 और उपशांत कषाय, जो सूक्ष्म हुआ है सूक्ष्म करना, उपशांत कषाय के 22 अंतर्मूर्त से कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल तीनों उपशामकों का उत्कृष्ट अंतर होता है। यही मुझे पता नहीं चला कि पहली बार श्रेणी में उसका मरण क्यों नहीं किया, मरण करते तो और ये पहले वाले अंतर्मूर्त घट जाते, पूरी श्रेणी उतार कर फिर उसका मरण करा, यानी बाद में उसको मिथ्यात्व में ले गए।
श्रेणी में मरण होता है तो अर्धपुत्र परिवर्तन काल तक नहीं घूमता है,
नहीं होगा शायद, क्योंकि श्रेणी में मरने वाले इसी नहीं,
क्योंकि ऊपर के
बराबर है, बराबर श्रेणी में मरने वाले वो अनुत्तर और उसमें भी उत्पन्न हो गए,
अनुदिश पे जाएंगे ना इसको, इस पे से
इसे नीचे लाकर उनको मरण कराया नहीं, क्योंकि इतनी विशुद्धि में मरने वाले उतनी, क्योंकि इतनी विशुद्धि में अगर मरेगा तो इतनी उसके ऊपर अनुत्तर अनुदिश में उत्पन्न
होगा,
नीचे वाले नहीं जाते वो बात नहीं है, हमने ये बात हाँ, तो यहाँ पर भी इससे भी वो कंक्लूजन निकल सकता है। श्रेणी में मरने वाले उतने
मरण नहीं करवाया,
नहीं शुक्ल लेशा की इतनी विशुद्धि में मरेगा तो ऊपर के स्वर्गों में उत्पन्न होगा। चले मैंने वो चर्चा करने से कुछ सॉल्यूशन निकल आता है ना। उनके इतने भव नहीं रहेंगे, यानी वो नीच क्रम से नीचे आएंगे समझो, फिर इसलिए वहां उनको पूरा नीचे लाए। हाँ भले उनका तो बीच में समय तो प्राप्त भी हुआ होगा असंख्यात बार, फिर भी श्रेणी नहीं चढ़ेंगे। श्रेणी में मरने वाले के जो शुक्ल लेशा है, जो मरण की शुक्ल लेशा है, वो बहुत विशुद्ध परिणामों में मरने वाले ऊपर के स्वर्ग में जाएंगे। आगे बढ़ते 16 नंबर का चदुन्नम खवग अजोग केवलिनम अंतरम केवचिरम कालादहोदी नाना जीवम पड़ुच्च जहन्ने नैव समय। जैसे हमने उपशम श्रेणी चढ़ने वाले, अभी कोई आठवें में आए एक शपक और वो आठवें वाले नवें में चले गए, एक समय के लिए कोई नहीं आठवें में, फिर एक समय के अंतर से कोई आ गए, ये हो सकता है। अधिक से अधिक अंतर नाना जीवन की अपेक्षा छः महीने में कोई ना कोई जीव चढ़कर वो तो जाएगा ही जाएगा। हमने कहा 6 महीने के अंतर से तो मोक्ष भी चाहते ही रहेंगे। अभी मेरा आपके लिए प्रश्न है, ये नए लोगों के लिए, आप छूत शांति रखना है, एक जीव की अपेक्षा कितना अंतर होगा शपथ श्रेणी का? अभी उषम श्रेणी का देखा ना, एक जीव की अपेक्षा अर्ध पुद्गल परावर्तन, तो शपथ श्रेणी का अंतर कितना होगा एक जीव की अपेक्षा अंतर में? आप क्या कहते हैं? अरे छेद उनको सोचने का, आपको घटित करना है। कैसे? आठवें का अंतर घटित करो। हाँ, अंतर कब होगा? आठवें वाला फिर आठवें में आना चाहिए, शपथ श्रेणी का अर्थ क्या होगा? बताया, पर ये सोच सोच कर उनको अपने आपने उत्तर दे दिया। देखो एक जीव आठवां हुआ सपना की उसने, अभी नीचे आने का सवाल नहीं है। आठवें वाला फिर दोबारा आठवें में कभी नहीं आएगा, वो नवे में ही जाएगा, नवे वाला दसवें में ही जाएगा और मरण भी नहीं होगा उसका। दसवें वाला बारहवें में ही जाएगा, बारहवें वाला तेरहवें में ही जाएगा, तेरहवें वाला चौदहवें में फिर मोक्ष जला जाएगा। फिर उसको एक जीव फिर दोबारा उसको आठवां गुण स्थान नहीं प्राप्त होगा क्षपक को। ग्यारहवा यहाँ होता नहीं है, दसवें के बाद बारहवा तेरहवा चौदहवा, समझ में? इसलिए आप लोगों को प्रश्न पूछा, इन लोगों को मालूम था, इसको जरा शांत रखना पड़ा है ना।
चुप कर।
शपथ श्रेणी वाला कैसे? देखो उसने कर्मों का क्षय करते करते चढ़ा है, वो वापस क्यों आएगा उसमें गुणस्थानों में? उपशम मैंने क्या उपशमित किया था, वो वापस फिर वो लौट के, यानी उसका उदय होता है वैसे तो उपशम छूट जाता है, वहां तो लौट कर आया था, ये तो अभी कायम के लिए जा रहा है, उसका अंतर नहीं होगा। इसलिए हमने पैर पलटा नहीं है, अभी नाना जीवन की अपेक्षा अन्य अन्य जीव श्रेणी चढ़ के चले गए, फिर दूसरे कोई आए उसमें अंतर हो सकता है। देखो ये चारों क्षपक और अयोग केवली का अंतर कितने काल तक होता है? नाना जीवन की अपेक्षा जघन्य से एक समय होता है, जैसे 7-8 जन अथवा अधिक से अधिक 108 अपूर्वकरण क्षपक एक ही समय में सबके सब अनिवृत्तिकरण क्षपक अनिवृत्ति क्षपक हो गए। इस प्रकार एक समय के लिए अपूर्वकरण गुणस्थान अंतर को प्राप्त हो गया, उसमें कोई जीव नहीं रहा। द्वितीय समय में 7-8 जन अथवा 108 अप्रमत्त संयत एक साथ अपूर्वकरण क्षपक हुए। इस प्रकार से अपूर्वकरण क्षपक का एक समय प्रमाण अंतरकाल उपलब्ध हो गया। इसी प्रकार शेष गुणस्थानों का भी अंतरकाल एक समय प्रमाण कहना चाहिए। एक समय के लिए कोई उस गुणस्थान में नहीं था, फिर कोई ना कोई उसमें आ गया, ये जगन्य अंतर एक समय वाला नाना जीवन की अपेक्षा। अब उत्कृष्ट अंतर देखेंगे। उपकसेना छम मासम चारों क्षपक और अयोग केवली का नाना जीवन की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतरकाल 6 मास है, क्योंकि हमने देखे ना 6 महीने 8 समय में 608 जीव जाते ही जाते, तो 6 महीने में कोई नहीं गए तो 8 समय में 608 जाएंगे। इसलिए अंतर कितना पड़ सकता है? 6 महीने का ही पड़ता है। जैसे 7-8 जन अथवा 108 अपूर्वकरण क्षपक जीव अनिवृत्तिकरण क्षपक हुए, अतः अपूर्वकरण क्षपक गुणस्थान उत्कर्ष से यानी अधिक से अधिक 6 मास के लिए अंतर को प्राप्त हो गया। तत्पश्चात 7-8 जन अथवा 108 अप्रमत्त संयत जीव अपूर्व करण क्षपक हुए। इस प्रकार से 6 मास उत्कृष्ट अंतरकाल उपलब्ध हो गया। इसी प्रकार से शेष गुणस्थानों का भी 6 मास का उत्कृष्ट अंतरकाल कहना चाहिए। आगे लिखा ना, एक जीव पड़ुच नथ्य अंतरम निरंतरम। एक जीव की अपेक्षा उक्त चारों क्षपकों का और अयोग केवली का अंतर नहीं होता। अंतर नहीं होता का अर्थ होता है वो एक बार वो गुणस्थान पार करके चले जाएंगे तो फिर दोबारा वापस लौट के नहीं आएंगे, क्योंकि क्षपक श्रेणी वाले जीवों के पतन का अभाव है। अब यहीं रुकेंगे हम। अच्छा, वो समाप्त होता है, इसको समाप्त कर लेते हैं। सजोगी केवलीनम अंतरम केवचिरम कालादो होदी नाना जीवम पड़ुच्च नथ्य अंतरम निरंतरम। ये भी हमने पहले बहुत बार देखा था, जो गुणस्थान हमेशा ही पाए जाते हैं तो संयोग केवली गुणस्थान में हमेशा ही जीव पाए जाएंगे। तो संयोग केवलियों का अंतर कितने काल होता है? नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं होता, निरंतर है, क्योंकि संयोग केवली जीवों से विरहित काल का अभाव है। एक जीवम पड़ुच्च नथ्य अंतरम निरंतरम, क्योंकि कोई जीव संयोग केवली पार करके अयोगी हुआ तो दोबारा लौट कर संयोगी तो नहीं होगा, तो उसकी अपेक्षा अंतर नहीं। उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है, क्योंकि अयोगी केवली रूप से परिणत हुए संयोगी केवलियों का पुनः संयोगी केवली रूप से परिणमन नहीं होता। इस प्रकार से ओघानुगम समाप्त हुआ। अंतर में सभी 14 गुणस्थानों में हमने अंतर देख लिया। अभी आदेश की अपेक्षा जो बात होगी वो कल हम देखेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो पालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देव।